तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि. Translation prepared by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. His bodily surface is the breeding ground for the active principles of everything and for all kinds of auspicious opportunities. His skin, like the moving air, is the generating center for all kinds of sense of touch and is the place for performing all kinds of sacrifice. उनके शरीर की सतह समस्त चीज़ों के उत्पत्ति का सक्रिय सिद्धांत हैं एवं समस्त अवसरों शुभ अवसरों का स्थान है. उनकी त्वचा घूमती हुई वायु के समान स्पर्श की इंद्रिय का उत्पत्ति केंद्र है और समस्त प्रकार के यज्ञों को करने का स्थान है. पपट द एयर इज द मूविंग एजेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड एज सच द जनरेटिंग सेंटर्स फॉर प्रमोशन टू द डिजर्विंग प्लैनेट्स. द सेक्रीफाइसेस आर हिज बॉडीली सर्फेस एंड आर नेचुरली द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटीज. वायु समस्त ग्रहों को घुमाने का माध्यम है और इस प्रकार से उच्च ग्रहों पर जाने का कारण है. सभी यज्ञ जो उनकी शरीर की सतह हैं स्वाभाविक रूप से समस्त शुभ अवसरों के उत्पत्ति स्थान हैं.
Yeah, this section is difficult to translate. You have to translate.
ये भाग इसका अनुवाद करना कठिन है.
Because it's difficult to understand even in the original.
क्योंकि इसका जो मौलिक रूप है उसमें उसको समझना भी मुश्किल है.
What does it mean that his bodily his bodily surface is the breeding ground for the active principle of everything? Difficult to understand what it means in the first place.
क्योंकि ये पहले इसको समझना ही बहुत कठिन है.
Basic understanding is that Krishna is the origin of everything.
आधारभूत समझ ये है कि कृष्ण सभी के उद्गम हैं.
This chapter, Srila Prabhupada has titled it Purusha Sukta Confirmed.
इस अध्याय का नाम Srila Prabhupada ने दिया है Purusha Sukta, उसको निश्चित किया.
This chapter, it is a it's parallel to the famous Purusha Sukta of the Vedas.
वेदों में वर्णित पुरुष सूक्त के समान ये अध्याय है.
In which it's stated how all the different parts of the necessary ingredients of the universe is generated.
जिसमें ये वर्णन है कि कैसे भगवान के दिव्य शरीर से सभी जो चीजें हैं उनका जो आधारभूत जो तत्व है वो कैसे उससे विकसित होता है.
And how the presiding deities of all the various manifestations enter into those manifestations.
और वर्णन है कि कैसे जो सभी चीज़ों के अधिष्ठाता देव हैं वो कैसे उन चीज़ों में प्रविष्ट होते हैं.
But that still, even after all of this, the Purusha, the form of the universe did not come to life.
किंतु उसके उपरांत भी जो पुरुष यानी जो समस्त भौतिक ब्रह्मांड का जो रूप है वो जीवंत नहीं हुआ.
But only when Vishnu entered, then everything came to life.
केवल जब विष्णु उसमें प्रविष्ट हुए तभी सब चीज जीवंत हुई.
Confirming that jivanam sarvabhuteshu, as Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna is the life, the living force of all living beings, of all manifestations.
ये इस बात को निश्चित करता है जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सभी चीजों का जीवन हूं.
One point in the purport here is that Srila Prabhupada states in a matter-of-fact way that the air is the agent by which all the planets move.
तात्पर्य में एक बिंदु जो बताया श्री प्रभुपाद ने कि जो वायु है वो सभी ग्रहों के चलने का घूमने का आधार है.
Which is completely against the, completely different to the understanding of modern science.
जो पूर्ण रूप से आधुनिक विज्ञान के समझ से विपरीत है.
Which states that the planets move by gravity.
जिसमें जिसके अनुसार जो सभी ग्रह हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा चलित हैं.
There is no air in outer space to move all the planets anyway.
और उनके अनुसार जो अंतरिक्ष है वहाँ पर कोई वायु ही नहीं है इन ग्रहों को चलाने के लिए.
Modern science is in the modern world, what is called science is considered to be is widely considered to be indisputable.
आधुनिक संसार में तथाकथित विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है उसको इस प्रकार से लोग समझते हैं कि वो प्रश्न के ही परे है.
And that anyone who disagrees with the verdict of the scientists on such basic facts, the word fact is in quotation marks here, must be crazy.
और जो भी कोई व्यक्ति ये आधुनिक विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको उनसे सहमत नहीं होता वो मूर्ख वो पागल होना चाहिए.
पागल ही है. Just like you there are descriptions of tribes still living in some remote jungles who believe some very primitive idea. Any anthropologists here, like what, for instance? Actually, when I think of their primitive ideas, they seem to make more sense than that of the modern scientists. So I'm trying to think of some example.
जैसे कोई आदिवासी कोई जाति है जो बहुत ही एक पिछड़े हुए कहीं दूर इलाके में कहीं रह रहे हैं तो उनकी जो मान्यताएं हैं वो विज्ञान से बिल्कुल विपरीत हैं. लेकिन बड़ा मुश्किल है इसको उदाहरण को सोचना क्योंकि वास्तव में वो लोग की जो समझ है वो ज़्यादा अर्थ सम्मत है आधुनिक विज्ञान की समझ से.
That word "adivasi" is a. Where did that word come from? I think that's come from the this whole idea of the Aryan invasion theory and all this kind of. Where does that come from? Adiva, you're an Adi. I mean, you're descended from people who lived in this land since time immemorial. It's just some idea that the Aryans came later or something like this.
The
original people were the jungle people and all this. It's jungle vasi or something like that.
In Tamil they say Malaivasi, those who are living on the hills. तो ये जो शब्द है आदिवासी, ये भी लगता है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, अर्थात आर्यन लोग बाद में आए भारत में, और जो पहले के लोग थे वो ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे, ऐसी मान्यता के अनुसार ही ये शब्द आया, ऐसा लगता है. तो इसलिए आवश्यकता है कि इसका भी हम एक समझें, पता लगाएं कि वास्तव में जो लोग ट्राइब्स हैं उसका वास्तविक शब्द क्या है उनको
कहना. Not very civilized, but it all comes from the idea that originally people were living in the jungles, and then they became civilized. You know, like building oil refineries and developing slaughterhouses and iPods and civilized.
तो ये जो मलयवासी है, ये शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जो असभ्य लोग थे वो इस प्रकार से पहाड़ों पर रहते थे. लेकिन ये जो बात है कि आदिवासी, अर्थात कि पहले सब लोग जंगल में ही रहते थे और कोई भी सभ्यता नहीं थी, और सभ्यता तो विकसित हुई तब जबकि लोगों ने स्लॉटर हाउस, कत्ल खाने खोलने शुरू किए, और ऑयल रिफाइनरी खोलने शुरू की, और आईपॉड बनाने शुरू किए.
यही सभ्यता है. आप लोग तो मालूम नहीं आप सब क्या करते हो, इस देहात में आया है और विद्युत भी इस्तेमाल नहीं करते. Translate that back into English.
This is, you are all uncivilized. What you are doing here? You don't even have electricity, iPod, and you are living in this remote rural area. You are all uncivilized.
That's what these rascals would have us believe.
ये बात है जो ये सब मूर्ख धूर्त लोग हमको विश्वास करने को कहेंगे.
The idea that originally man was civilized and life, civilization has been present in the world for millions of years, as we learn from Shastra. Modern people don't like to accept this.
तो ये बात कि सभ्य जीवन लाखों लाखों सालों से विद्यमान हैं, आधुनिक लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए करना नहीं चाहते.
And that the air is the moving agent of the planets. So this, to modern people, this just sounds ridiculous.
और ये बात कि वायु सभी ग्रहों को चलाती है, ये एक मजाक का विषय लगता है आधुनिक लोगों को.
This they say it's due to gravity.
वो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ग्रह चलते हैं.
So it was a very good theory. It seemed like when they first came up with it.
जब सबसे पहले पहले ये सिद्धांत बाहर निकाला गया तब बहुत ही अर्थसम्मत है ऐसा लगता था.
But after studying the universe more, they found that there wasn't enough matter within it to make everything stay in place according to their theory.
किंतु जब ब्रह्मांड को और अधिक अध्ययन किया तो ऐसा पता लगा कि ब्रह्मांड में तो पर्याप्त मात्रा में पदार्थ, स्थूल पदार्थ नहीं है जिससे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर सके सभी ग्रहों को चलाने के लिए.
And everyone understand all this. It's pretty high Hindi. Anyway, let's hope they can understand. So now the scientists have come up with the idea that 90% of the matter in the universe is invisible. We can't. It must be there, otherwise there couldn't be gravity. And there must be gravity because the planets are staying in place. So 90% of the matter, we can't see it at all.
So abhi wo is nishkarsh pe pahunche hain ki निश्चित रूप से लगता है कि 90% जो पदार्थों का जो वजन है, पदार्थ है, वो तो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर ही नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है. तो अगर ये सभी ग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से घूम रहे हैं तो फिर ये जो पदार्थ है वो कहाँ है, इसका मतलब वो आंखों में हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, यही एक निष्कर्ष हो सकता है.
So now they're trying to prove it.
और अभी वो इसको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं.
They already know that it's true, but they just haven't seen it yet, so they're trying to prove that it's actually there.
हमको पता ही है कि वो है, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए उसको लोगों को बताने के लिए, साबित करने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं.
Science, right? It's called science, you know. It's everything's proved, and you can. They say, "Can you see God? We can't see God, so there's no God. But we can't see the invisible matter, and you're supposed to just believe in it because the scientists said so." You know, but they're scientists, you know. They're sensible people.
नहीं, ये जो है ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान है. तो आप भगवान आपको दिखते नहीं, इसका मतलब भगवान नहीं है. लेकिन जब वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये जो पदार्थ है वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, तो ये सही होगा क्योंकि वो वैज्ञानिक है.
प्रूव इट इन द फ्यूचर.
वर्तमान में हमारे पास का कोई सबूत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम भविष्य में इसको साबित करेंगे.
जस्ट यू सी, वी हैव मेड सो मच प्रोग्रेस इन साइंस.
देखो हमने विज्ञान में कितनी तरक्की की है.
Just like, you know, we discovered so many things, like Professor Einstein made so many wonderful theories, and now the human race is advancing.
और अभी आप देखिए कि आइंस्टाइन ने कितने बड़े-बड़े सिद्धांत निकाले हैं, और पूरी जो मनुष्य सभ्यता है वो अभी प्रगति कर रही है.
One little problem came up recently with Einstein's theories.
अभी कुछ समय पहले ही कुछ आइंस्टाइन के सिद्धांत में कुछ एक समस्या खड़ी हो गई.
It's all based on the supposed axiom that nothing moves faster than light.
पूरा जो सिद्धांत था उसका आधार था कि कोई भी चीज विद्युत की गति से तेज नहीं चलती है.
विद्युत,
इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश की गति.
But unfortunately for them, they weren't really trying to disprove it, but they happened to find out which something which they call a neutrino actually moves faster than light.
तो वो लोग इस सिद्धांत को गलत साबित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने आप से वो उनको पता लगा कि एक कण है न्यूट्रिनो जो कि प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से चलायमान है.
So, this is the way Maya works.
इस तरह से माया कार्य करती है.
People, they are called panditamani. They think that they are very learned.
इन लोगों को बोलते हैं panditamani, अर्थात ये लोग सोचते हैं कि बहुत पंडित हैं.
They think that, you know, we really know how everything's going on.
यानी कि वो समझते हैं कि हम जानते हैं सब चीज कैसे चल रही है.
कृष्णा सप्लाइज द इंटेलिजेंस टू वेरियस डीमंस हु डोंट वांट टू सी हिम बाय व्हिच दे कैन सी द वर्ल्ड इन सच अ वे दैट देयर थ्योरीज टू देम सीम रियल.
भगवान श्री कृष्ण ऐसे असुरों को जो कभी भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि उनके अपने जो तथाकथित सिद्धांत हैं वो सही हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है.
But because they're not correct, they're always changing because they find that they're not actually correct.
लेकिन क्योंकि ये तथाकथित सिद्धांत सही नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है.
Who could have been more respected than Einstein, but now it's seen that he also didn't know what he was talking about.
आइंस्टाइन से ज़्यादा कौन सम्मानित व्यक्ति हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन को भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है.
So, yeah, Srila Prabhupada just states this, the air is the moving agent for all the planets, matter of factly.
Srila Prabhupada यहाँ एक तथ्य को वर्णित कर रहे हैं कि ये सभी ग्रह वायु के द्वारा चलायमान हैं.
Because that's the verdict of Shastra.
क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है.
So it is a great task of the International Society for Krishna Consciousness to show that everything in Shastra is correct.
तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक ये प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य है ये दिखाना कि जो भी शास्त्रों में कहा गया है वो सब सही है.
Of course, it's difficult to show people who keep their eyes closed.
निश्चित रूप से जो लोग अपनी नेत्रों को बंद रखते हैं उनको दिखाना मुश्किल है.
But one factor in favor of the preaching of the devotees from Shastra is that many people in the Western world are disenchanted with modern science and the whole civilization, so-called, based on it.
लेकिन जो शास्त्रों के आधार पर प्रचार कर रहे हैं, एक चीज उनके साथ में है जो अनुकूल है कि पाश्चात्य जगत में अधिक मात्रा में लोग तथाकथित
कुछ लोग
विज्ञान के जो सिद्धांत और जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, वो बेकार है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं.
And actually, at least the kind of people that would even listen to devotees at all, they are willing to accept at least prima facie that the statements that devotees make, which go against everything which is supposed to be true according to the modern world.
और कम से कम वो लोग जो भक्तों को सुनेंगे, ऐसे जिनकी योग्यता है, तो वो लोग ये जो कथन हैं शास्त्रों के जो पूरी तरह से वर्तमान जो तथाकथित विज्ञान के विरुद्ध हैं, उसको कम से कम एक प्रारंभ में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं.
I've had a few interesting experiences in this regard.
इस संबंध में मुझे कुछ रुचिकर अनुभव हुए हैं.
Yeah, there's no Hindi word for interesting. Once in Dublin in Ireland, I was giving a lecture in the center there, and I stated that this they haven't gone to the moon, it's all bogus. And after the lecture, one devotee said to me, "Oh, you shouldn't say that. The public, they won't be able to accept that."
एक बार डबलिन आयरलैंड में मैं एक प्रवचन दे रहा था जिसमें मैंने बोला कि आदमी कभी चंद्रमा पे नहीं गया, ये सब बेकार है. तो भक्तों ने मुझे बोला कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस तथ्य को.
From the members of the public who are like mostly all newcomers, none of them seem to have any problem. They didn't protest.
किंतु जो ऑडियंस श्रोतागण किंतु जो श्रोतागण हैं, जो अधिकतर नए लोग थे, तो उनमें किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, इस तथ्य का, इस बात का.
Once in a public, it was like after Rath Yatra in London, in the center of London, heart of London, in England, I was, you know, out there supposed to be questions and answers, there are all kind of people challenging me and this and that. From the public, they were very challenging, many challenging people.
एक बार रथ यात्रा के उपरांत लंदन के केंद्र में एक प्रश्नोत्तर एक चल रहा था, तो बहुत से लोग थे जो कि चुनौती के रूप में बहुत सारे प्रश्न मुझसे कर रहे थे.
So eventually I kind of lost my temper. Not fully, partially.
तो कुछ समय उपरांत मेरा धैर्य कुछ हद तक मैं खो दिया.
And I said, "You people, you think you're very intelligent and you think you know what's going on, but actually you're all fools. You have no idea about the purpose of life. So from the beginning of your life, you've simply been brainwashed by this modern society by this modern education to think that." That you're very intelligent, but actually you have no idea of the actual purpose of life like that. I went on for about 5 minutes like this.
और मैंने उसमें आवेश में 5 मिनट तक लगभग उनको इस प्रकार से बोला कि तुम लोग सब मूर्ख हो, तुम सोचते हो कि तुमको सब पता है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि ये जो आधुनिक सभ्यता है, इसने तुम्हारा पूरा जो दिमाग है उसको इस प्रकार से बना दिया है कि तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन वास्तव में तुमको पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि.
And then I stopped and they were all quiet.
फिर मैं रुक गया और वो सब लोग भी शांत थे, चुप थे.
One person, they'd all been like challenging. One person said, "He's right."
और बीच में एक आदमी बोला, ये सही बोल रहा है.
So, my point here is that although these statements, many of the statements, if not almost all the statements Prabhupada makes, go against everything that is considered correct in modern society.
तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि श्रील प्रभुपाद जो बहुत सारे वो कथन दे रहे हैं, अगर सभी नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक काफ़ी सारे, वो जो आधुनिक विज्ञान है वो जो बोल रहा है उसके विरुद्ध हैं, उसके विपरीत हैं.
But we should not be afraid to say that the whole society is wrong and Prabhupada is right, Shastra is right.
किंतु हमें ये कहने में झिझकना नहीं चाहिए कि श्री प्रभुपाद शास्त्र जो कह रहे हैं वो सही है और जो पूरा समाज जो कह रहा है यदि वो उसके विपरीत है तो गलत है.
Because that's the fact.
क्योंकि यही तथ्य है.
Okay, so I'll finish there. And unless there are any questions.
यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ. अगर कोई प्रश्न यदि है तो किसी का भी पूछ सकते हैं. दिस पीपल व्हेन दे फाइंड आउट दैट समथिंग व्हाट दे बिलीव्ड बिफोर इज नाउ रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट एक्चुअली दैट्स अ डिफीट, दे गिव इट अ टर्न दैट्स अ न्यू ब्रेक थ्रू इन द साइंस, लाइक द एनीथिंग, एनी न्यू डिस्कवरी. इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट एक्चुअली दैट प्रूव्स दैट दे वर रॉन्ग, दे जस्ट
लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, राइट. That book should be very widely distributed. But in America now, the devotees don't want to distribute that because many of them don't, because they're mostly distributing on college campuses, and they're afraid that the kids will go and ask their professors who will give some kind of answer, and then the devotees won't be able to reply to that. I don't know why they're so so weak-minded. Mm-hmm. They think it's all this bogus idea that you can't preach unless you have a college. You can't preach to university students or professors and unless you're as educated as them in their own nonsense. But I don't think that's not true. I remember years ago in England, Revati Nandan Swami, he was typical devotee, college dropout. And he was going all over. And that was, we only had a few books in those days. He was going all over England to all the universities and challenging on the evolutionary theory and being successful everywhere. At Tribhuvanas, he could hardly read. He was not very educated at all. He joined when he was age 15. And he would go everywhere and preach, but no problem. It's Yasya Deve Para. What is that? Yasya Deve Para Bhakti Yata Deve Tata Guru Tasya Aite Katita Hayata Prakashante Mahatmana. We shouldn't be bewildered. There's at the end of that life comes from life, there's Hansa Dutta Swami, who's not being bewildered by all the word jugglery of Dr. Kavor. There was Ganadas from England also. He was on some campus in America and he was speaking like this openly, and then some professor came along and scolded him and said, with a bunch of, you know, hocus pocus words, that you don't know the latest discoveries, this, that. But Prabhupada would cut through all of that by saying, "So, can you produce life?" He would say like this. There's another incident I heard of in San Diego. Sadaputta Prabhu was giving a lecture and to the students. And then the professor said afterwards, "Well, do you know about this? Do you know about this, 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 this?" And he said about some like latest discoveries and this and that, but Sadaputta came right back at him and said, "Well, yes, okay, but this has been refuted by this and this and that and that." And then the professor just left and said, "Well, I have some other engagement. I'll come back a little later." So, it's good to know all the scientific stuff, also. Those who can do it. Okay, so we'll finish. So much work to do on so many fields. It's to turn over the modern civilization, turn it over and hand it back to Krishna. It's so much work to do. Okay, so for the third time, Hare Krishna.